18 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना इसराइली हमलों से की।
आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इसराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है।
विश्लेषण करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ हासिल भारत को और बताएंगे कश्मीर में आंदोलन से कितना नुकसान हुआ है उद्योगों का।
कश्मीर की सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्री मानी जाती है तो वो है फ्रूट इंडस्ट्री। नामसाइल हालात और बंशियों और कर्फ्यू की वजह से इसको भी बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय सेना की तुलना इसराइल से करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा है। कभी पहले सुनते थे कि इसराइल ने ऐसा किया, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जितना गौरव आज जो सेना में है उन पर है, उतना ही गौरव हमें सेवानिवृत्त फौजियों पर भी है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने इराक के मोसुल शहर में लड़ाई लड़ रहे सभी पक्षों से मानवता दिखाने की अपील की है। शहर में इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इराकी सेना और उसके सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। सहायता एजेंसियों को डर है कि IS स्थानीय लोगों को सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या रासायनिक हथियारों की तैनाती कर सकता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के क्षेत्रीय निदेशक रॉबर्ट मार्डिनी का कहना था,
इट मींस नॉट टारगेटिंग सिविलियंस, इट मींस नॉट टारगेटिंग सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
दुनिया आपको देख रही है, आप मानवता दिखाएं, इसका मतलब है आप आम नागरिकों पर निशाना ना बनाएं, ढांचागत सुविधाओं को निशाना ना बनाएं, अस्पतालों पर हमला ना करें। इसका मतलब ये है कि भारी हथियारों का इस्तेमाल ना हो, लोगों को पानी, खाद्य सामग्री और दवाओं की सुविधा मिले। ये थे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के क्षेत्रीय निदेशक रॉबर्ट मार्डिनी के शब्द। रूस ने अलेप्पो में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में हवाई हमले रोकने की घोषणा की है। इस मानवीय रोक की घोषणा करते हुए रूस का कहना है कि ये हवाई हमले तय की गई योजना से 48 घंटे पहले ही रोके जा रहे हैं। रक्षा मंत्री सरगई शोइगु का कहना था कि रूसी और सीरियाई सेना अब बमबारी रोक रही है ताकि 8 घंटे की तय समय सीमा के दौरान बाहर निकलने के लिए आम नागरिक और लड़ाकू तैयारी कर सकें। लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि इसके लिए कम से कम 12 घंटों की जरूरत होगी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मनी ने यूक्रेन में एक नए सम्मेलन का आयोजन किया है। जर्मनी सरकार में प्रवक्ता का कहना है कि चांसलर एंगेला मर्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन और फ्रांस में उनके समकक्ष पेत्रो पोरोशेंको और फ्रांसुआ ओला को मिन्स्क समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए बर्लिन बातचीत के लिए निमंत्रित किया है। इस समझौते पर साल 2014 और फिर पिछले साल फरवरी में भी बातचीत हुई थी, लेकिन ये वार्ता पूर्वी यूक्रेन में सरकारी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाई को रोकने में विफल रही। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना इसराइली हमलों से की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के भारतीय सैनिक पराक्रम में किसी से कम नहीं है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने खुलेआम इसराइल का नाम लिया है। मंडी में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले,
आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इसराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। जितना गौरव आज जो सेना में तैनात है।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंडी में भाषण देते हुए। मैंने थोड़ी देर पहले पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से संपर्क किया और पूछा कि यह शायद पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने खुलेआम इसराइल के द्वारा अपनाए गए तरीकों की तारीफ की है।
देखिए, कोऑपरेशन तो इसराइल से काफी समय से चल रहा था, लेकिन ये सही था, ढके छुपे लफ्जों में हमेशा किया जाता था, प्राइम मिनिस्टर की विजिट को भी अवॉइड किया जाता था। और अब बीजेपी गवर्नमेंट उससे आगे बढ़ चुकी है, अब वो साफ साफ रिलेशंस अपने बताना चाहती है, वो इसराइल को रोल मॉडल की तरह देखती है कि उसने जिस तरीके से अपने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं वो समझती है कि भारत के लिए भी ठीक है। और हमेशा से अगर आप देखें तो जनसंघ के देश से बीजेपी, जनसंघ सब ने इसराइल की हमेशा तारीफ की और इनकी पॉलिटिकल लाइन भी यही रही कि इसराइल से अच्छे भारत का संबंध होने चाहिए।
अभी तक इसराइल की जब बात होती थी तो पैलेस्टीन की भी साथ साथ बात की जाती थी, चाहे सिर्फ नाम लेने भर के लिए, लेकिन अब तो वो बैलेंस बैठाने वाली बात भी नहीं दिखाई दे रही, आप क्या सोचते हैं?
देखिए, फिलिस्तीन का मसला तो बहुत नीचे चला गया, सभी ने उसको अबैंडन कर दिया, अरब देशों ने भी अबैंडन कर दिया। भारत तो स्टिल अभी भी फिलिस्तीन की बात कर लेता है, भले वो प्रमोट न करे अरब कॉज को या पैलेस्टीनियन कॉज को, लेकिन अगर आप अरब देशों को देखें तो कोई भी अरब देश इस वक्त फिलिस्तीन की बात नहीं करता, वो आपको दिखेगा कोई भी अरब देश ऐसा नहीं है जो कि बड़ी संप्रति रखता हो, जब से खासतौर से जब से वहां पे अख़वान मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड हमस जो आई है, धीरे धीरे सब ने अपने डिस्टेंस कर लिया। इजिप्ट के भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इजिप्ट भी हमस से खुश नहीं है क्योंकि ये मुर्सी वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रेसिडेंट मुर्सी भी अख़वान मुस्लिमीन के थे, फिर सऊदी के भी रिलेशन उनके साथ अख़वान मुस्लिमीन के साथ नहीं। इस वक्त फिलिस्तीन की सपोर्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, अरब फिलिस्तीन को पहले भी जो कुछ सपोर्ट मिलती थी वो पैन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से ज्यादा मिलती थी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जितनी है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी फिलिस्तीन के मसले को कभी नहीं प्रमोट करती है। और से जब से अरबों ने कश्मीर के इशू में मेडलिंग शुरू की, पाकिस्तान ब्लैक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, तो वो रिश्तों में गर्मी तब से के बाद से कम होती चली।
तो ये इसको आप एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट मानेंगे कुल मिलाकर डिप्लोमेटिकली अगर इस चीज को देखा जाए?
शिफ्ट काफी पहले से आ रहा था और ये अब ओपन जो हो गया है वो बीजेपी ने आके बिल्कुल साफ साफ कर दिया है, लेकिन ये के शिफ्ट तो है, लेकिन ये ग्रेजुअल शिफ्ट था जो पिछले 10-15 साल से आ रहा था। इसराइल से जो मेजर आर्म्स डील हुई थी वो पहले हुई थी, वो यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में मेजर आर्म्स डील भी हुई, तो कंसिस्टेंटली हम लोग देख रहे हैं सीधे धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते हुए 10 साल पहले से। देखिए, जब से सोवियत यूनियन टूटा, कोल्ड वॉर खत्म हुई और ये तय हुआ भारत ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया कि पश्चिमी देशों से अच्छे रिलेशन है, खासतौर से अमेरिका, तो ये रियलाइज हुआ कि अमेरिका जाने का रास्ता इसराइल से होता है। तो पहले इसराइल की उन्होंने इंडिया ने ज्यूइश लॉबी को हायर किया, उसके मदद से हमारे रिलेशन जल्दी उनसे, उसकी दो वजह थी, एक तरफ तो ये था कि जो यहूदी संगठन है वो पाकिस्तान का जो की लॉबी है अमेरिका में उसको भी मदद करेंगे कमजोर करने में, और दूसरे हिंदुस्तान के रिलेशन भी अमेरिका से बनाने में मदद की, तो बहुत बड़ी मदद इनको इसराइल के थ्रू मिली। अभी भी थोड़ा सा लिहाज है, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गए नहीं, मैं समझता हूँ सारे अरब इस्लामिक देशों का दौरा वो पहले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लास्ट में वो वहाँ जाएंगे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार कमर आगा। गोवा में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर ऐसी हवा भारत में बनी जैसे सम्मेलन में शामिल देश पाकिस्तान को एक स्वर में अलग थलग करने की बात कहें, मगर सम्मेलन के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस सम्मेलन से भारत को क्या हासिल हुआ। विदेशी मामलों पर नजर रखने वाले इसे भारत की कूटनीतिक चूक के रूप में भी देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
उम्मीद की जाने लगी कि ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर सभी सदस्य देशों का जो साझा बयान जारी किया जाएगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने जो सम्मेलन से पहले बयान दिया और जो सम्मेलन के दौरान बयान दिया और जिन बातों को उठाया उसका वर्णन किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस साझा बयान में نہ تو اوڑی حملوں کے بارے میں کچھ کہا گیا اور نہ ہی پوشن، پناہ، سمرتھن اور پرایوجت جیسے شبد ہی ساجھا گوا ڈکلیریشن کا حصہ بنے، بلکہ جو ساجھا بیان جاری کیا گیا اس میں نہ پاکستان کا ذکر تھا اور نہ ہی پاکستان میں سکریے چرم پنتھی سنگٹھنوں کا۔ اس کو لے کر راجنیتک اور کوٹنیتک حلقوں میں بحث چھڑی ہوئی ہے۔ راجدوت رہ چکے ودیش معاملوں کے جانکار راکیش سود کو لگتا ہے کہ بھارت کے لیے برکس سمیلن سے حاصل وہ سب کچھ نہیں ہوا جس کی لوگ امید کیے بیٹھے تھے۔
میرا خیال سے شاید یہ میڈیا میں ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ تھا، اس لیے شاید کچھ لوگوں کو بہت زیادہ امید تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ چائنا وہاں پہ برکس کا حصہ ہے، پوری کوشش کرے کہ وہ پاکستان کو اسی طرح اس کا اتنا اسٹرانگ کرٹیسزم نہ ہونے دے، اور وہی ظاہر ہوا کہ چائنا کے ساتھ اس بات کے اوپر ڈفرینسز بھی میرے خیال سے سامنے آئے جب چائنا نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کچھ اور باتیں کہی۔ اگر اسٹیٹمنٹ ہو رشیا کے ساتھ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی لینگویج ٹیررزم کے اوپر تھوڑی فرق ہے، اور ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں وہ بھی چائنا اگر کیونکہ ایکٹیولی اس کا پاکستان کے ساتھ تھا اس کے اندر، تو اس لیے رشیا نے اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ایشو جو ہے وہ وہیں آ جاتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے، اس میں میڈیا میں ہائپ ہو جاتی ہے، ٹھیک کچھ نہیں ہوا۔
جہاں تک چین کی بات ہے تو اس نے بھارت کی این ایس جی کی سدستا کو لے کر بھی اپنا رخ سپشٹ نہیں کیا، جبکہ سمیلن سے ٹھیک پہلے روس کے ساتھ ہوئے کئی رکشا سمجھوتوں سے امید کی جانے لگی کہ وہ کم سے کم بھارت کی چنتاؤں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ ودیش منترالے میں سچیو رہ چکے آر ایس کالہا کا کہنا تھا،
جو ڈیکلریشن میں ہوتا ہے نا وہ بائی کنسنسس چلتا ہے، تو جب تک پانچ دیش جو تھے ان کی کنسنسس نہیں بنتی تو نیچرلی وہ ڈیکلریشن میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ چین اپوز کرتا ہے کہ کوئی ریفرنس اباؤٹ پاکستان پہ تو آنی نہیں چاہیے، روس کی سپورٹ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا سمبندھ ہے ان کے ساتھ وہ تو مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا، کیونکہ یہ جو ہماری ملٹری سپلائی ریلیشن شپ ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
حالانکہ بمسٹیک کے نیتاؤں کو برکس کے دوران نیوتا دے کر بھارت نے پاکستان کو کڑا سندیش ضرور دینے کی کوشش کی، مگر کوٹ نیتی اور ودیش نیتی اپنی طرح سے ہی چلتے ہیں، جہاں اکثر وہ بھی ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ سلمان راوی، بی بی سی دلی۔
بی بی سی ہندی سیوا کے ریڈیو کاریکرم آپ شارٹ ویو 16, 19, 25, 31, 41 اور 49 میٹر بینڈ یعنی 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں۔ فریکوینسیز کی وسترت جانکاری ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر۔
اور ابھی انتراشٹری وشے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے الیپو میں ودروہیوں کے قبضے والے علاقوں میں طے شدہ سمے سے 48 گھنٹے پہلے ہی ہوائی حملے روک دیے ہیں۔ رکشا منتری سرگئی شوئگو نے بتایا کہ روس اور سیریائی سینا نے بمباری اس لیے روکی ہے تاکہ گروار کو نردھارت 8 گھنٹوں کے دوران ناگرک اور لڑاکے الیپو چھوڑنے کی تیاری کر سکے۔ شوئگو نے ودروہیوں پر پربھاؤ رکھنے والے دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ بی بی سی سنواداتاؤں کے بھیجے بیورے کے ساتھ امر شرما۔
روس کا کہنا ہے کہ سیریائی شہر الیپو میں روسی اور سیریائی جنگی جہازوں کی بمباری آج صبح سے روک دی گئی ہے۔ رکشا منتری سرگئی شوئگو نے بتایا کہ روس نے اس طے شدہ مانویے روک کے لیے گروار کو ستھانیہ سمے کے مطابق صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کا سمے نردھارت کیا ہے۔ شوئگو نے الیپو میں گھیرا بندی والے پوروی حصے میں ودروہیوں اور ناگرکوں سے اپیل کی ہے کہ شیتر سے باہر نکلنے کے لیے مانوی مدد کے لیے بنائے گئے گلیارے کا استعمال کریں۔ رکشا منتری سرگئی شوئگو نے اس یوجنا کے بارے میں اعلان کیا۔
آج صبح 10 بجے سے روسی ایرو اسپیس فورس اور وایو سینا سیریا کے الیپو شیتر میں ہوائی حملے روک دے گی۔ ہوائی حملے کو پہلے روکنا اس لیے ضروری ہے تاکہ 20 اکتوبر کو مانوی مدد پہنچائی جا سکے۔ اس سے یہ سنشچت ہو سکے گا کہ 6 گلیاروں کے راستے عام ناگرک سرکشت طریقے سے باہر نکل سکیں اور پوروی الیپو سے بیمار اور گھائلوں کو باہر نکالنے کی तैयारियां की जा सकें। हम पूर्वी अलेप्पो के सशस्त्र समूहों पर प्रभाव रखने वाले देशों से दरख्वास्त करते हैं कि वे इन विद्रोही लड़ाकों से अपील करें कि वे हथियार रख दें और शहर छोड़ दें।
रक्षा मंत्री सरगई शोइगु के शब्द, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि इलाके को छोड़ने के लिए कम से कम 12 घंटों की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान ड्यूजारिक का कहना था कि हम लोग लड़ाई में इस रोक का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लंबे समय तक रोक लगाने की जरूरत है ताकि सहायता सामग्री पहुंचाई जा सके। रूस की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब एलेप्पो में हुए हमले में एक ही परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस घोषणा से कुछ देर पहले ही रूस के लड़ाकू विमानों ने एलेप्पो में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में भीषण हमला किया। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था के मुताबिक रात भर चली बमबारी में एक दंपति और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। संस्था के मुताबिक विद्रोहियों के इलाकों में हुई बमबारी में 430 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री सरगई लेवरोव का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अल नुसरा फ्रंट जैसे संगठनों पर प्रभाव रखने वाले देश इस मौके का फायदा उठाएंगे और उन्हें एलेप्पो से निकलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा,
एलेप्पो पर हमले रुक गए हैं, ये सद्भावना का एक संकेत है, इस उम्मीद के साथ कि मौजूदा रोक का उपयोग अल नुसरा फ्रंट और इसके जैसे अन्य समूहों और उन सशस्त्र समूहों के बीच फर्क करने के लिए किया जा सकेगा जिसे अमेरिका और क्षेत्र के अन्य देश समर्थन और हथियार देते हैं।
विदेश मंत्री सरगई लेवरोव के शब्द, अल नुसरा फ्रंट अब जबात फतेह अल शाम के नाम से जाना जाता है। रूस की शिकायत है कि अमेरिका ने ऐसे कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं जिससे वो खुद के समर्थन वाले उदारवादी सीरियाई विद्रोही समूहों और चरमपंथी संगठन जबात फतेह अल शाम के बीच अंतर कर सके। इस क्षेत्र में कई समूहों ने ज्यादा ताकतवर समूह जबात फतेह अल शाम के संग रणनीतिक साझेदारी बना ली है और उसका समर्थन करते हुए लड़ाई कर रहे हैं।
रूस ने अलेप्पो पर हवाई हमले रोके।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में बीती 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से प्रदर्शन, बंद और हिंसा का दौर जारी है। हिंसक घटनाओं में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बंद की वजह से कश्मीर के उद्योगों को भी बड़ी चोट लगी है। उद्योग जगत का दावा है कि पर्यटन, होटल, हस्तशिल्प और सेब उद्योग को मिलाकर 3 महीने के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ माजिद जहांगीर।
बंद और कर्फ्यू की वजह से पिछले 3 महीनों में कश्मीर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर में बंद या कर्फ्यू की वजह से हर दिन 120 से 130 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुखिया मुश्ताक अहमद के मुताबिक कश्मीर को बीते 95 दिनों में करीब 11,900 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान में कश्मीर का हर कारोबारी सेक्टर शामिल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बीते दिनों के बंद और कर्फ्यू की वजह से 400 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। मुश्ताक अहमद का कहना था,
ये इसमें तकरीबन ये जो पर डे हम देख रहे हैं नुकसान तकरीबन 120 से 130 करोड़ रुपए तक एक दिन का नुकसान हो रहा है और ये 95 दिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 11,800 से 900 करोड़ रुपए तक का नुकसान है। इसमें जो हमारे जो सेक्टर्स मेन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, टूरिज्म इन्वॉल्व हुआ है, हैंडीक्राफ्ट इन्वॉल्व इसमें हुआ है, ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, जनरल ट्रेड, गैरेज, किस हर एक सेक्टर जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है वो इसमें इफेक्ट हुआ है।
कश्मीर के होटल उद्योग को भी भारी नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। कश्मीर के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन कहना है कि उनकी एसोसिएशन के साथ कश्मीर के करीब 500 होटल और रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं। 3,000 कमरों पर आधारित 500 होटल खाली पड़े हैं। एसोसिएशन के मुखिया डॉक्टर मजीद कहते हैं,
हमारे मोर देन 500 तकरीबन 2,500 रूम जो हमारे पास थे वो होटल खाली रहे। सबसे लो रेंज वाला होटल और सबसे बड़े रेंज वाला होटल कम से कम 2,500 तो ऑन एन एवरेज पर डे पड़ सकता है।
कश्मीर के पर्यटक उद्योग को भी यहाँ पिछले 3 महीनों के तनावपूर्ण हालात ने भारी नुकसान से दोचार कर दिया है। कश्मीर के पर्यटक उद्योग के साथ कश्मीर की एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है जो इस उद्योग से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 8 जुलाई से पहले हर दिन 12,000 पर्यटक कश्मीर का रुख करते थे, जबकि ये संख्या आज की तारीख में घटकर 700 तक पहुंच गई है। कश्मीर पर्यटक उद्योग के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह बताते हैं,
अगर टूरिज्म की बात करें तो कोई 4 से 4.5 लाख टूरिस्ट का लॉस हुआ है कश्मीर को, क्योंकि ये जो अंडर स्टार्ट हुआ जुलाई में तो एवरेज इनफ्लो जो था टूरिस्ट का वो 10 से 12 हजार का था, तो आज के डेट में ये बहुत ही कम है, कोई 500-600 या 700 के करीब है।
कश्मीर के सेब उद्योग को भी 3 महीने के बंद और कर्फ्यू के कारण अब तक हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर में हर वर्ष सेब का कारोबार 6 से 7 हजार करोड़ तक का होता है। इस उद्योग के साथ कश्मीर के 4 लाख के करीब परिवार जुड़े हुए हैं। नुकसान के आंकड़े देते हुए कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने BBC को बताया,
और उसमें 7 हजार करोड़ में अभी तक जो हमारा सीजन अभी चल रहा है, अभी हमारा 1-2 महीने का सीजन है, तो हम समझते हैं कि जो हमने सरसरी का अंदाजा किया कि करीबन 2 हजार करोड़ का अभी तक नुकसान हुआ है। कश्मीर की सबसे बड़ी अगर इंडस्ट्री मानी जाती है तो वो है फ्रूट इंडस्ट्री। नामसाइल हालात और बंशियों और कर्फ्यू की वजह से इसको भी बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। उसका कारण ये है, जो कर्फ्यू जुलाई और अगस्त में सख्ती से लागू किया गया था, और हम कोई भी फ्रूट ग्रोवर अपने बागात में लास्ट जो स्प्रेज होती है वो नहीं कर पाया।
बीते 3 महीने के बंद और कर्फ्यू का आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा कश्मीर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उठाना पड़ा है। 9 जुलाई से कश्मीर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप है। राजधानी श्रीनगर में 5,000 के करीब मिनी बसें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं। कश्मीर के अलगावादी बीते 8 जुलाई से हर हफ्ते हड़ताल का कैलेंडर जारी कर रहे हैं, और इन कैलेंडरों में किसी किसी दिन हड़ताल में कुछ घंटों की ढील दी जाती है। तहम कुछ घंटों की इस ढील में दुकानें खोली तो जाती हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस ढील के कुछ घंटों में अपना काम बहाल नहीं कर पाया है। अलगावादियों ने अपने ताज़ा हड़ताली कैलेंडर को 20 अक्टूबर तक फिलहाल बढ़ाया है। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
BCCI और सुप्रीम कोर्ट के बीच लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर चल रहे टकराव का अंतिम नतीजा क्या होगा, इसके लिए अभी 2 सप्ताह तक और इंतजार करना होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट के साथ हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त।
आखिरकार BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए वो घड़ी आ ही गई जिसे वो लगातार टालता जा रहा था, या फिर चाहता था कि ये घड़ी आए ही ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी एक न चली, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वो याचिका ठुकरा दी जिसमें कल उन्होंने अपील की थी कि कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और इसे 5 जजों की बेंच के हवाले किया जाए। वैसे तो बहुत से मुद्दे थे जिन्हें लेकर BCCI को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक राज्य एक वोट, एक व्यक्ति एक पद, चयन समिति में 3 सदस्य, पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र 70 साल हो और 9 साल या 3 कार्यकाल लेकिन ये भी लगातार ना हो, BCCI में कोई भी मंत्री या अधिकारी ना हो, अब इतने बड़े और इतने कड़े फैसले BCCI को 6 महीने में मानने ही होंगे, तो क्या BCCI के लिए मुश्किल घड़ी है? क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मतलब पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा BCCI का, और वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आज तक जिस ढंग से क्रिकेट चल रही थी, एक आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, आपको पता था कि कौन सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो कुछ चीजों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इसमें यह है कि एकदम से एक्सपीरियंस लोग जाएंगे तो यंगस्टर्स आएंगे वो कैसे काम करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अगर एक कोशिश की है तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के लिए, हमसे अगले 3 साल के लिए, मैं आपको पता लग जाएगा कि जो यंग एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं वो माहिर हैं काम में या नहीं।
दरअसल बीसीसीआई के आला अधिकारियों ने मामले को पूरी गंभीरता से नहीं लिया और न ही बीते समय से कुछ सबक सीखा। जब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को एक ही झटके में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, आईपीएल की दो धुरंधर टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की विदाई हुई, उनकी जगह दो नई टीमें जुड़ी, शशांक मनोहर फिर से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और जब शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष बन गए तो उनकी जगह अनुराग ठाकुर ने ली। लेकिन तब इन्हीं अधिकारियों को लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशें अच्छी लग रही थी, लेकिन अब जब बारी खुद की आई तो कल अनुराग ठाकुर बोले,
अगर जस्टिस लोधा बीसीसीआई के सदस्यों को मेंबर एसोसिएशंस को वो क्लैरिफाई कर पाते हैं या कोर्ट से वो क्लैरिफिकेशन मिलती है तो उसे बहुत फर्क पड़ेगा।
तो क्या ये माना जाए कि अब बीसीसीआई के लिए ऐसे वैसे जैसे तैसे लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने के सिवा कोई चारा नहीं है? विजय लोकपल्ली कहते हैं,
नहीं अभी कोई पर्याय नहीं है, वो बाद में स्पोर्ट्स लगाएंगे तो वो शायद हो सकता है, बट इस वक्त तो कोई रास्ता नहीं।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की नजर में उसका निर्णय ही था। आज के फैसले से बीसीसीआई की तमाम दलीलें फुस पटाखा साबित हुई, लेकिन पूरा फैसला क्या होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद अपना निर्णय देगा।
बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। और अब आइए देखते हैं खेलों की दुनिया में और क्या हो रहा है, एक बार फिर आदेश कुमार गुप्त के साथ।
पाकिस्तान ने दुबई में गुलाबी गेंद से खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच में कल देर रात वेस्टइंडीज को 56 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 346 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 289 रन पर समाप्त हो गई। हालांकि जब तक डेरेन ब्रावो क्रीज पर थे तब तक पाकिस्तान की सांसें थमी हुई थी। ब्रावो ने एक छोर पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी करते हुए 116 रनों की शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 249 गेंदों का सामना किया, 406 मिनट विकेट पर बिताए, 10 चौके और एक छक्का भी लगाया। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इनके अलावा सलामी बल्लेबाज लियन जॉनसन ने 47 और रोस्टन चेज ने 35 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे सके। पाकिस्तान के मोहम्मद आबिर ने 63 रन देकर 3, यासिर शाह ने 13 रन देकर 2 और मोहम्मद नवाज ने भी 32 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अजहर अली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जिन्होंने पहली पारी में नाबाद 302 रनों की यादगार पारी खेली। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 21 तारीख से अबू धाबी में खेला जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये पाकिस्तान का 400वां टेस्ट मैच था। वहीं आज से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन मुकाबले शुरू हुए, लेकिन कल महिला एकल वर्ग के पहले दौर में भारत की पीवी सिंधु चीन की ही बिंगजियाओ के खिलाफ खेलेंगी। रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता पीवी सिंधु को छठी वरीयता दी गई है। उनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में भारत के बी साई प्रणीत थाईलैंड के तानोंग साक सायन सोम बुनसुक से, अजय जयराम भी थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना से और पुरुष युगल वर्ग में मनुअत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क के किम एस्टुर्प और एंडर्स इसका रूप रॉसमुसेन का सामना करेगी। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच गुरुवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। आज भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में सुरेश रैना भी जुड़े। उल्लेखनीय है कि वो वायरल के कारण पहला एक दिवसीय मैच नहीं खेल सके थे।
ये थे आदेश कुमार गुप्त जो खेल समाचार सुना रहे थे। और सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय सेना की तुलना इसराइल से करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा है। कभी पहले सुनते थे कि इसराइल ने ऐसा किया, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण में हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने इराक के मोसुल शहर में लड़ाई लड़ रहे सभी पक्षों से मानवता दिखाने की अपील की है। शहर में इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इराकी सेना और उसके सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। रूस ने एलेपो में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में हवाई हमले रोकने की घोषणा की है। इस मानवीय रोक की घोषणा करते हुए रूस का कहना है कि ये हवाई हमले तय की गई योजना से 48 घंटे पहले रोके जा रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन में एक नए सम्मेलन का आयोजन किया है। जर्मनी सरकार में प्रवक्ता का कहना है कि चांसलर एंगेला मर्कल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके समकक्ष यूक्रेन और फ्रांस के पेत्रो पोरोशंको और फ्रांसवा ओला को मिन्स्क समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए बर्लिन आमंत्रित किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही समाप्त करते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे मनीष जालुई, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।